लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सभी महिलाओं को हमारी शुभकामनाएं। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1909 में हुई थी। दरअसल 1908 में अमेरिका में मजदूर आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में करीब 15,000 महिलाएं शामिल हुई जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपने अधिकारों की मांग करते उतरी। कामकाजी महिलाओं की मांग थी उनकी नौकरी के घंटे कम किए जाएं और वेतनमान बढ़ाया जाए। इसके अलावा इस आंदोलन में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की मांग की गई। जब सरकार के कानों में कामकाजी महिलाओं के आंदोलन की आवाज पहुंची, तो एक साल बाद 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने महिला दिवस मनाने का ऐलान किया। बाद में 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने रोटी और शांति के लिए हड़ताल किया और फिर 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दे दी। महिलाओं की भागीदारी को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाएं। गाजा युद्ध में विराम लगाने के प्रयास के तहत मिस्र में सोमवार को दूसरे दिन भी जारी बातचीत के बीच मानवाधिकार मामलों के लिए यूएन प्रमुख ने आगाह किया है कि मौजूदा युद्ध के बृहद क्षेत्र में भड़कने का जोखिम बढ़ रहा है, जिसकी आंच मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित हर देश और उससे भी परे पहुंच सकती है। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों ने गजा युद्ध में इंसानी जिंदगियों के इतने बड़े नुकसान पर हैरानी व्यक्त की है, जिसमें अब तक 30,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और 70,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने एक तत्काल मानवीय युद्ध विराम और 7 अक्टूबर को हमास हमले में बंधक बनाए गए लोगों को तत्काल रिहा किए जाने का भी आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने तत्काल ऐसे कदम उठाए जाने की पुकार लगाई है जिनसे पूरे गजा में और सभी जरूरतमंदों तक महत्वपूर्ण मानवीय सहायता पहुंच सके। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
गाजा युद्ध में मौत का शिकार होने वाले लोगों की संख्या 30,000 होने पर कष्टपूर्ण आश्चर्य व्यक्त किया गया है। वहीं गुरुवार को रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी खबरें आईं कि गाजा सिटी में जब लोग जीवन रक्षक सहायता सामग्री की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उसी समय इसराइली गोलीबारी में और सहायता ट्रकों के नीचे दबकर 100 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। यूएन राहत समन्वय मामलों के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने इस घटना में सैकड़ों लोगों की मौत और घायल होने की खबर पर हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि गाजा से जीवन भयानक गति से खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि करीब 5 महीने के क्रूर युद्ध के बाद गाजा में अब भी हमें हैरान कर देने की क्षमता है। उधर मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने भी गाजा में लोगों का संहार रोके जाने की पुकार लगाई है। यूएन मानवीय सहायता एजेंसियों के अनुसार गाजा पट्टी में खाद्य असुरक्षा चरम पर है और हर 4 में से एक व्यक्ति को विनाशकारी स्तर पर इससे जूझना पड़ रहा है। यूएन राहत समन्वय एजेंसी ओचा ने कहा है कि गाजा पट्टी के अधिकांश हिस्से में हवा, जमीन और समुद्र से तीव्र इसराइली बमबारी होने की खबरें हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आम लोग हताहत और विस्थापित हो रहे हैं और नागरिक बुनियादी ढांचे का विनाश हो रहा है।
म्यांमार में आम नागरिक असहनीय पीड़ा और क्रूरता भोग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय प्रमुख वोल्कर टर्क के अनुसार म्यांमार की सेना ने अंतर्जातीय तनाव को भड़काने के लिए राष्ट्रवादी हथियार बंद गुटों को तैयार किया है, जिसे राखिन प्रांत में हिंसा अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है और आम नागरिकों पर गोलाबारी होने और उनके विस्थापित होने की खबरें हैं। राखिन प्रांत वर्ष 2017 में सुर्खियों में आया जब लाखों रोहिंग्या लोगों ने सैन्य कार्रवाई से अपनी जान बचाने के लिए भागकर पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण ली। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर से दूर घटित हो रहा संकट देश की जनता के लिए कभी न खत्म होने वाला एक दुःस्वप्न बन गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने शुक्रवार को मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए ये बात कही है। उन्होंने मानवाधिकारों के लिए यूएन की शीर्ष फोरम को बताया कि 2021 में देश में सैन्य तख्तापलट के बाद मानवीय आपात स्थिति उपजी और अब हाल के महीनों में ये बद से बदतर हुई है। फरवरी 2021 के बाद से अब तक म्यांमार की सेना के हाथों 4,500 से अधिक लोगों की जान गई है, जिनमें सैकड़ों महिलाएं और बच्चे हैं। मृतकों का वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक होने की आशंका है। म्यांमार में फिलहाल सैन्य नेतृत्व का विरोध करने वाले 20,000 से अधिक लोग बंदी हैं, जिनमें लगभग 4,000 महिलाएं हैं। आम नागरिकों को किसी भी समय किसी भी आरोप में हिरासत में ले लिए जाने का जोखिम है और फिर उनके साथ बुरा बर्ताव होने और मानवाधिकार हनन की घटनाओं की खबरें आई हैं।
अफगानिस्तान में 2.5 साल से मानव अधिकारों की बिगड़ती स्थिति ऐसी पीड़ा का कारण बन रही है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानव अधिकार विशेषज्ञ ने मानव अधिकार के हनन को रोकने और अफगान लोगों में उम्मीद जगाने के लिए तालिबान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई किए जाने की पुकार लगाई है। वहीं मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने अफगान के स्टेडियम में लोगों को सरेआम मौत की सजा दिए जाने की घटनाओं पर गहरा क्षोभ प्रकट किया है और ऐसी सजा दिए जाने पर तुरंत विराम लगाने की अपील की है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
हाल ही में 3 लोगों को सरेआम मौत की सजा देने की घटना को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय यानी OHCHR ने क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक बताया। यूएन मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा,
वी आर अपॉल्ड बाय द पब्लिक एग्जीक्यूशंस ऑफ 3 पीपल एट स्पोर्ट्स स्टेडियम्स इन अफगानिस्तान इन द पास्ट वीक।
हम अफगानिस्तान में पिछले सप्ताह 3 लोगों को एक स्टेडियम में सरेआम मृत्युदंड दिए जाने की घटना पर बहुत व्याकुल और हतप्रभ हैं। मृत्युदंड की ये घटना गजनी और शेबेरगान शहरों में तथा कथित अदालत और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। कथित रूप से दोषी पाए गए 3 व्यक्तियों को मौत की सजा देने के लिए उन पर कई गोलियां चलाई गईं।
यूएन मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस के शब्द। मानवाधिकार कार्यालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन बताया है और देश के तालिबान प्रशासन से सार्वजनिक मृत्युदंड दिए जाने के मामलों पर स्वैच्छिक रोक लगाने का आग्रह किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ रिचर्ड बेनेट ने कहा है कि तालिबान द्वारा तथाकथित अपराधियों को सरेआम फांसी व शारीरिक दंड देने की खबरें शासन के विरोधियों की गैर न्यायिक हत्याओं, लोगों को गायब किए जाने व उन्हें यातना दिए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक नई वैश्विक चिकित्सा रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया भर में मोटापा अपना दायरा बढ़ा रहा है। पृथ्वी पर मौजूद हर 8 में से औसतन 1 मोटापे के साथ जीवन जी रहे हैं। मोटापा संपूर्ण शरीर प्रणालियों को प्रभावित करने वाली एक ऐसी बीमारी है जो हृदय, यकृत और जिगर, गुर्दों, जोड़ों और प्रजनन प्रणालियों पर भी असर डालती है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
मोटापे को एक जटिल आर्थिक बीमारी समझा जाता है जो एक संकट बन गया है। ब्रिटेन की एक प्रसिद्ध पत्रिका द लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन के आंकड़ों के अनुसार 1990 के बाद से मोटापे की चपेट में आने वाले वयस्कों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है, जबकि 1990 के बाद से मोटापे की चपेट में आने वाले 5 से 19 वर्ष के बच्चों व किशोरों की संख्या 4 गुनी हुई है। मोटापा कई गैर संचारी रोगों के खतरे को बढ़ाता है, जिनमें हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज और सांस संबंधी पुरानी बीमारियां शामिल हैं। अधिक वजन या मोटापे को कम से कम 13 विभिन्न प्रकार के कैंसर का कारण भी माना जाता है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन स्थित परम धर्म पीठीय प्रेरितिक प्रायश्चित्तालय द्वारा आयोजित आंतरिक मंच पर पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों ने शुक्रवार को संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। इस अवसर पर संत पापा ने पश्चाताप की क्रिया पर विश्वास तथा क्षमा के महत्व को प्रकाशित किया। परम धर्म पीठीय प्रेरितिक प्रायश्चित्तालय के अध्यक्ष कार्डिनल माउरो प्याचेंसा के नेतृत्व में संत पापा का संदेश सुनने आए प्रतिभागियों का संत पापा ने अभिवादन किया और कहा कि चालीसा काल के प्रकाश में पश्चाताप की क्रिया पर विश्वास तथा क्षमा और पुनर्मिलन के महत्व को प्रकाशित करना उचित है। उन्होंने कहा कि चालीसा काल के संदर्भ में और विशेष रूप से जयंती वर्ष की तैयारी में प्रार्थना के संदर्भ में मैं प्रस्ताव करना चाहूंगा कि हम एक सरल और समृद्ध प्रार्थना पर एक साथ विचार करें जो ईश्वर के पवित्र वफादार लोगों की विरासत से संबंधित है और जिसे हम सुलह के अनुष्ठान के दौरान पढ़ते हैं, जो है पश्चाताप की प्रार्थना। पश्चाताप के तीन दृष्टिकोणों यानी कि ईश्वर के समक्ष पश्चाताप, उनमें विश्वास और पीछे न हटने के संकल्प पर संत पापा फ्रांसिस ने चिंतन किया। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम पश्चाताप कोई आत्म विश्लेषण का फल नहीं है और न ही अपराध की मानसिक भावना का, बल्कि यह सब ईश्वर के अनंत प्रेम, उनकी असीमित दया के सामने हमारे दुख की जागरूकता से उत्पन्न कृत्य है। उन्होंने कहा कि दूसरा दृष्टिकोण है विश्वास। पश्चाताप के कृत्य में ईश्वर को असीम रूप से अच्छा और सभी चीजों से ऊपर प्यार किए जाने के योग्य रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने कहा कि पश्चातापी के होठों पर ईश्वर की अनंत अच्छाई और जीवन में ईश्वर की प्रधानता की पहचान के बारे में सुनना प्रिय है, जो सभी चीजों से ऊपर है। संत पापा ने कहा कि पश्चाताप का तीसरा पहलू है इसका उद्देश्य, जो है पश्चाताप करने वाले का यह संकल्प कि वह फिर कभी पाप में नहीं पड़ेगा। पश्चाताप का सही अर्थ समझाते हुए संत पापा ने कहा, ये शब्द एक उद्देश्य को व्यक्त करते हैं, कोई वादा नहीं करते। उन्होंने कहा कि पश्चाताप की प्रक्रिया में यह स्मरण रखा जाए कि हम मनुष्य कमजोर हैं तथा बारंबार पाप के प्रलोभन में पड़ सकते हैं, जबकि प्रभु ईश्वर दया के सागर हैं, जो सच्चे दिल से पश्चाताप करने वाले को क्षमा कर देते हैं। अस्तु, पुरोहितों को दिया गया पाप क्षमा का वरदान महान है, क्योंकि यह आपको कई भाइयों और बहनों को ईश्वर के प्रेम की मिठास का अनुभव करने में मदद करने की अनुमति देता है। स्पेन के कैथोलिक धर्माधीक्षित सम्मेलन द्वारा शांति को प्रोत्साहन देने हेतु कादेना 100 शीर्षक से आयोजित एकजुटता संगीत कार्यक्रम में गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस ने एक वीडियो संदेश प्रेषित कर शांति की दिशा में कैथोलिक धर्माध्यक्षों तथा समारोह के समस्त कलाकारों के प्रयासों के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा, मैं उन कलाकारों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने निर्दोष पीड़ितों की मदद करने के लिए इतनी उदारता के साथ प्रतिभा को एकजुट किया है। इससे भी बढ़कर इसलिए क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि कला और संगीत सेतु निर्माण के लिए शांति के दूत और साधन बन सकते हैं। इसी संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने एक बार फिर अपने विचारों को शहीद यूक्रेन, फिलिस्तीन और इसराइल की ओर निर्देशित किया तथा विनाश से पीड़ित तथा युद्ध से तबाह हुई आबादी को याद किया। साथ ही आयोजकों को दूसरी तरफ न देखने के लिए और उन लोगों के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए धन्यवाद दिया जो सीधे युद्धों के प्रभाव से पीड़ित हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अमरीकी राज्यों के संगठन ओसा की स्थायी परिषद के असाधारण सत्र के अवसर पर वैटिकन के वरिष्ठ धर्माधिकारी और परम धर्म पीठीय पर्यवेक्षक महाधर्माधीक्ष हुआन अंतोनियो क्रूस सेरानो ने उन महिला प्रतिभाओं के मूल्यों को रेखांकित किया जो एक अधिक न्यायसंगत और भाईचारे से पूर्ण विश्व के पुनर्निर्माण हेतु अपरिहार्य नायक सिद्ध हो सकती हैं। महिलाओं के वैध अधिकारों के दावे का समर्थन करने के महत्व को रेखांकित करते हुए बुधवार 6 मार्च को अमरीकी राज्यों के संगठन ओसा की स्थायी परिषद के असाधारण सत्र में राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर महाधर्माधीश सेरानो ने कहा कि परम धर्मपीठ महिलाओं के अधिकारों और उन्हें बढ़ावा देने वालों का समर्थन करती है। संत पापा फ्रांसिस के शब्दों को उद्धृत कर उन्होंने कहा, महिला प्रतिभा सामाजिक जीवन की सभी अभिव्यक्तियों में आवश्यक है, इसलिए कार्यस्थल और विभिन्न स्थानों पर जहां महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, कलीसिया और सामाजिक संरचनाओं दोनों में महिलाओं की उपस्थिति की भी गारंटी दी जानी चाहिए। वैटिकन स्थित परम धर्म पीठीय अंतर धार्मिक परिसंवाद परिषद ने तैपेई के फू जेन कैथोलिक विश्वविद्यालय के सहयोग से 8 और 9 मार्च को ताइवान के न्यू तैपेई सिटी में कन्फ्यूजन धर्म के लोगों के साथ संवाद को बढ़ावा देते ख्रिस्तीय लोग दिशा निर्देश और परिप्रेक्ष्य विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य शिविर का आयोजन किया है। एक बयान में बताया गया कि यह आयोजन परम धर्म पीठे अंतर धार्मिक परिसंवाद परिषद द्वारा चल रही पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य कन्फ्यूजीवाद के अनुयायियों के साथ बातचीत में शामिल होने वाले कैथलिकों के लिए आधिकारिक दिशा निर्देश तैयार करना है। बयां के अनुसार समस्त विश्व के कई कन्फ्यूजीवाद विशेषज्ञों ने पिछली ऑनलाइन बैठकों में भाग लिया है तथा अपनी अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता साझा की है। 8 और 9 मार्च की बैठक इस पहल में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। वैटिकन सिटी और राज्य में पहली बार 1929 में वैटिकन की प्रेरितिक लाइब्रेरी ने डॉक्टरेट की डिग्री से संपन्न युवा महिलाओं के एक समूह को नियुक्त किया था। इन महिला विशेषज्ञों के अनुभव सकारात्मक रहे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 12 साल बाद यह परियोजना समाप्त हो गई। आज वैटिकन की प्रेरितिक लाइब्रेरी में 50% से अधिक कर्मचारी महिलाएं हैं, जिनमें से कई नेतृत्व पदों पर हैं। 2012 से कार्यरत वैटिकन लाइब्रेरी की पहली महिला सचिव राफाएला विंचेंसी ने बताया कि पवित्र रोमी कैथोलिक कलीसिया के पूरा लेखपाल और लाइब्रेरियन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पुरुष हैं, लेकिन पांडुलिपियों, मुद्रित कार्यों, बहाली, पुनरुत्पादन, आईटी और सचिवालय के विभाग जहां सभी सूत्र मिलते हैं महिलाओं के हाथों में हैं। उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से इस तथ्य के कारण है कि मानविकी और मानवतावादी मामलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक है, जो एक वस्तुनिष्ठ स्थिति को दर्शाता है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।